कहाँ होता है? सिंधी होता है, देश होता है। हजारों लाख आचार गुरु विद्यासागर महाराज जी को हम देखते हैं, आज जन जन के दिल में वो इस तरह बदल गए हैं कि कहीं पर भी वो चले जाए लेकिन गुरुवर का स्वप्न में भी पता चल जाए कि गुरु महाराज हमारे नगर में आ रहे हैं तो कैसा आनंद हो जाए बता। धोखे के बहुत पहले गलत यूज कर जाए इस तरह पहले वास्तव में आदर्श का प्रवेश है तो क्या होगा, इतना आनंद आएगा। भूति की बात हमारे लिए आनंद दे देगी क्योंकि हमारे दिल में गुरु महाराज उतर। हमें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि हम व्यक्तियों की दुनिया को दिल में उतर जाए कि व्यक्तियों कर जाए। बोलो जल्दी हमारी तरफ। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसी हमारी क्रियाएं हो कि हम हर व्यक्ति के दिल में उतर जाए और जब कहीं पर भी हम रहे अथवा न रहे किंतु हर व्यक्ति हमें याद करते। हमें क्या बनना है आप ये तो बहुत सोच रहे हैं किंतु हमें कैसा बनना है इस विषय में हम नहीं सोच पाते। कोई विद्यार्थी सोचते हैं हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई सीए बनेंगे, अलग अलग प्रकार की सबकी हॉबियां हुआ करती हैं किंतु हमें कैसा बनना है क्या करना है इस विषय में पहले हमें निर्धारण करना होगा। अभी जब कहना चाहिए शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ था, आप लोगों को सुना है तो नरेंद्र मोदी जी ने जब बच्चों की नीति ने एक दिन जब उद्बोधन किया था तब उन्होंने यही पूछा था कि हमें क्या करना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है किंतु हमें क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। किसी ने पूछा उनसे क्या आपने कभी सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? सुन रहे हो ना कि कभी आपने सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? तो उन्होंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना जरूर सोचा था कि मैं जहां पर भी रहूंगा अपने देश के हित में काम करूंगा, देश को उद्धार के लिए काम करूंगा। जब मैं चाय बेचता था सुन रहा हूँ, जब मैं चाय बेचता था तब भी मेरे मन में देश की इसकी भावना थी, जब मैं सेवा के रूप में आज पेट बनाया तब भी देश की सेवा का भाव था, और जब मैं मुख्यमंत्री बना वहां से मुख्यमंत्री बने थे, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब भी देश की इसकी भावना थी, आज मैं प्रधानमंत्री बनाऊ तो मेरे मन में एक ही उद्देश्य है जितना बनेगा मुझे देश का हित करना है और देश के विकास में अपना जीवन समर्पित। अब कोई अलग अलग उद्देश्य बनाते हैं, कोई शिक्षक बन रहे हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर, किंतु ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हम जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहे ऐसा अपना जीवन बनाए कि हर व्यक्ति के दिल में उतर जाए, हम अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जी सके, हम अपने जीवन को खुशी और आनंद के साथ जी सके। सुनने आप लोगों को ध्यान क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन हमारी बात सुन रहा है कौन हमारी बात नहीं। आप लोग ध्यान से करेंगे देखो उन्होंने तो आज हमारे पास लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, बच्चे लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते। कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो खुशी बन जाऊंगा, किंतु क्या जितने डॉक्टर बने उसका खुशी बन गए क्या? क्या जितने इंजीनियर और सीए बने क्या वे प्रसन्न चित्त है? नहीं, हैप्पीनेस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। सफलता बहुत ले जाए तो प्रसन्नता जीवन से गायब हो जाए तो ये सफलता भी कोई कारी नहीं होती। तो दूसरी बात आपको जो हमने बताई कि अपने जीवन का लक्ष्य ये बनाना कि हम भी सुखी रहे और हमारे सामित में या हमारे साथ में जो रहने वाले वो भी हमसे सुखी रहे और आनंदित हमारा जीवन बने, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज दूसरी बात समझिए आपको जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सुखी जीवन का निर्माण, ना कि इंजीनियर डॉक्टर आगे आगे बनना, ये उसका साधन हो सकता है। हो सकता है व्यक्ति डॉक्टर बनके बहुत सुखी बन जाए, किंतु जिसने माननीय लक्ष्य बना लिया, वो लक्ष्य अगर उसको नहीं मिला तो जिंदगी भर आक्रोशित हो जाएगा। हम जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहे, यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन बना लिया, आनंद होना जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो साधु बन के भी हम सुखी हैं कि नहीं बताओ? बताओ, आप लोग स्वेटर पहने, सूट बूट पहने, आपको ज्यादा ठंड लग रही है, हमको ज्यादा ठंड लग रही है। सुखी कौन है? हम आज महाराज बने, हमने सब कुछ छोड़ा, धर्म से जुड़े, तो हम सुखी हैं कि नहीं बताओ? आप ज्यादा सुखी है कि हम ज्यादा सुखी है? बोले लगे थे महाराज जी ज्यादा सुखी है ना, फिर आप सबको सुखी तो बनना ही है, फिर क्या करना पड़ेगा? चल कोई बात नहीं, अभी तो हम महाराज बनना तो माता जी बनना तो बहुत दूर की बात है, दीदी जैसे बनना तो बहुत दूर की बात है, किंतु जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर अपने जीवन को कैसे सुखी बना सके, ये चीज हमें समझना है। बात कोई बड़ी नहीं है, दुनिया में जितने लोगों ने सफलता या कोई कुछ नया हासिल किया है, उन्होंने नया कुछ नहीं किया, किंतु करने के तरीके में उनका नया बन रहा। तो दूसरी बात जो हमने आपको कही, जीवन का लक्ष्य बनाना, हमें प्रसन्नता के साथ, आनंद और सुख के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, रोते रोते जिंदगी को व्यतीत नहीं करना है। कुछ लोग गीत गाते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर गिरा तो जीना ही पड़ेगा, ऐसी जिंदगी मत जियो। दुनिया में हम आए हैं और जैन को हमने जन्म लिया है, और सबसे बड़ी खुश नसीब ये है कि आजकल विद्या सागर जी के युग में हमने जन्म लिया है। आज कैसे गुरु हमें मिले हैं, आज आपको 50-50 पहले लोग तरफ के चले गए, वे गुरु कब मिले ही, और आज हमें गुरुवर विद्या सागर जी जैसे गुरु मिल गए, हम तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी विद्या सागर जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और पीछे वाली पीढ़ी के लोग मिलेंगे, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हम तो उस युग में जन्म लिया जब विद्या सागर जी हमारे सामने है। लोग तरसते हैं दिल्ली को, अगर आप चले आए गुरुवर विद्या सागर जी के दर्शन करने में लोग तरसते हैं, और हमने तो बुंदेलखंड की माटी में जन्म लिया जहाँ आचार्य महाराज हमेशा विचरते हैं। हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, गंज वाले कितने बार आ गए आचार्य महाराज, एक दो बार तो आई गए, और हम लोगों को भी कई बार भेज दिया, और गुरु अपने को मिलते रहते हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। तो हम ऐसी जिंदगी क्यों जिए कि दुनिया के आए तो जीना ही पड़ेगा? नहीं, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साफ को, तो जब दुनिया में आओ तो दुनिया को याद आए, जब हम दुनिया में चले जाए तो दुनिया को याद हमें याद करे, ऐसे हमें जिंदगी बनाना है। बस ऐसे ही आपकी जिंदगी बने, ये दूसरी पॉइंट आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। हम एक छोटे का छोटा काम करते हुए सुखी रह सकते हैं, हम छोटा का छोटा काम करके भी सुखी रह सकते हैं, और बहुत बड़े अधिकारी बनके भी सुखी नहीं रह सकते। पद से जीवन में लाभ नहीं होता, जीवन में लाभ तो हमारी मानसिकता और सत्कारों से लाभ होता है। ये दूसरी बात आपको बता दी। अब ये बताओ, हमारे जीवन में जब कभी विकास के चांस होते हैं, इन महापुरुषों की जिंदगी हमने आपके सामने चर्चा की थी, जिन्होंने जिंदगी ऐसी बनाई कि हर व्यक्तियों के दिल में वो पड़ गए, हम ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो हमें आदर पुरुषों का आदर सामने रखना होगा, जिन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि आज वो सबके दिल में उतर गए। ये महापुरुष वे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में होने वाले उपकारों के महत्व को समझा। एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। पहली या दूसरी कक्षा में हमने पढ़ी थी, एक जंगल में एक शेर रहता था, और वह शेर अपने गुफा में सो रहा था, उसी समय चूहा है और चूहा जो आया तो शेर की पीठ पर उछल कूद करने लगा, तो शेर की क्या बोल रही हाथ बोल सके, हाथ तो जल्दी सुना पड़ा होगा, तलवार जल्दी सुना पड़ेगा, तो शेर की खुल गई नींद, और जैसे शेर की नींद खुल गई तो उसने कहा ये क्या है, उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, और जैसे ही चूहे को पंजे में पकड़ लिया तो चूहा रोने लगा, चीं-चीं करके, बोलो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तो शेर ने भी सोचा इतना सा चूहा है, उससे पेट भी नहीं भरने वाला है और बेचारा मुझे मिला कर रहा है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा लेकिन एक साथ कर बाद में कभी भूल कर दी मेरी गुफा की ओर मत आना, और शेर ने चूहे को मुक्त कर दिया। उस दिन जल्दी उसने शिकारी आया, जाल बिछाया और उसने शेर फंस गया। ऐसी कहानी है ना, याद आ रही सुन जाने। अब जब वहां पर ऐसी शिकारी आया, जाल बिछाया, उसने शेर फंस गया और उसी समय वहां से चूहा निकला और उसने देखा उस शेर ने मेरी पर उत्पाद किया था, आज संकट में है, मुझे इसका उत्पाद का बदला चुकाना चाहिए। और चूहे ने क्या किया, अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटना प्रारंभ कर दिया और थोड़ी देर में वो जाल जब कट गया फिर उसमें से मुक्त होकर के भाग गया। ये कहानी सही ना समझे। अब ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है थोड़ा सोचना। हम लोग कह रहे हैं आजकल टीवी का जमाना है, टेलीविजन का जमाना है, देखते हैं किंतु सोचते नहीं। ये दर्शन करने वालों को भैया वही से करना है, बार बार न कहना पड़े जादू। अब जिन्होंने हम सुनो क्या कहते हैं आपको कि हमारे ऊपर किसका उत्पाद है और उस उत्पाद को हमें कैसे बदला चुकाना है ये शायद हमें ज्ञान नहीं। हमारे जीवन में जिसने हमें उपकार किया है यदि उसके ऊपर हम विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, उसके उपकार को हम उपकार मानते हैं तब तो उसके उपकार को छिपाने का भाव मन में पैदा हो सकता है। कौन सा उपकार किया हमने ऐसा तो सब करते रहते हैं तो कभी भी उपकार छिपाने का भाव मन में नहीं आएगा। समझिए आपको क्या कहा, पहले जिसका हमारे जीवन में उपकार है उपकार माने तो उस छोटे से चूहे ने उपकार माना किसका, और उसको उपकार चुकाने का बदले का मन में उसे भाव पैदा हुआ और उसने पुरुषार्थ भी किया। आज हमारे जीवन में कितने व्यक्तियों का उपकार है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे। आज बच्चे जब बड़े हो गए आज हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ने लगे हैं लेकिन विचार करिएगा क्या हम इतने बड़े हुए हैं तो किसी का कोई उपकार हमारे जीवन में है कि नहीं। बोलो किसका उपकार है आपके जीवन में, सबसे पहला उपकार किसका है माँ का, उसके बाद उपकार किसका है पिता का, और उसके बाद उपकार किसका है गुरु का। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणमत बारम्बार कि हम बल किया बड़ा उपकार। भजन गाते ना बोले एक बार, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणमत बारम्बार कि हम बल किया। सही बताना, जितने बच्चे वहां पर बैठे हैं क्या हमें लगता है कि माता पिता और गुरु का हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है, और उपकार कई बार तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ही हमारे सब सुखों में बाधा है। हमें घूम ले जाना है मम्मी मना करती है, मोबाइल चाहिए पापा मना करते हैं, हमें फ्रेंड से बात करना है बड़ा भाई मना करता है, यहाँ घूमने जाना है, ये कपड़े पहनना है, दीदी मना करती है, अभी कह दिया जींस पहन भाग जाओ, बड़ी मुश्किल हो गई। तो ये हमारे उपकारा है, ये हमारे उपकारा है, समझिए नहीं आता। ये तो हमें दुखी बनाना चाहते हैं। हम तो कई बार सुनते कि बहुत जब वही सहेलियां हैं, बढ़िया खूब गर्मी में फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और घूमने जाएंगे और स्कूल में जिससे फ्रेंड से हम लोग खूब मस्ती करेंगे, लेकिन इधर मम्मी पापा क्यों दिन झंडा लेके खड़े रहते हैं, शेविंग करो, घूमी करो, जी कपड़े मत पहनो, मंदिर जाओ। अरे मंदिर जाने में क्या होता है, उसकी देर हम घूमेंगे फिरेंगे तो एंजॉय आनंद लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम जो माता पिता हमारे उपकार ही है, हमें लगता नहीं कई बार की हमारे उपकार कर रहे हैं। अभी आप लोग महावीर यहाँ में प्रवेश करके आए हैं तो डायरेक्ट आया कि कुछ आपको अवरोध लिखा था, जब आप गेट से प्रवेश करें तो सीधे एरो के रूप में आप आया कि बीच में कहीं आपको मुड़ना पड़ा, तीन डंडे रहे वहां, ठीक है, वह शुरू और बीच में तीन, क्या है दिमाग में लाओ। रेलवे स्टेशन से कभी आप बाहर उठे तो स्टेशन से बाहर जब टिकट कहते हो सीधे वहां डायरेक्ट वहां आपको जाने नहीं दिया, बीच में पाइप लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर तीन पाइप लगे हैं, ये पाइप जो लगे हैं आज विचार करना, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे मास्क सुनने से आपका भला नहीं होगा, लेकिन सुनने के बाद थोड़ा सोचना, विचार करना कि आखिर गुरु जी ने हमारे लिए जो बात कही है वो कहाँ तक सही है और हम उसमें कितने जीवन में अमल ला सकते हैं। अब ये तो आपके मेरा पहले तो दो डंडे ऐसे लगे हैं, उसके एक दूरी से एक डंडा ऐसा लगा है, तो तीनों डंडे अवरुद्ध है, इन्होंने हमारी गति को रोक दिया है। तो ये गलत लगे को काम के अलग करना चाहिए, समय की बात में गलत काम किया, बताओ बच्चों वो तीन घंटे जो लगे वो सही है कि गलत है। आपको बढ़िया इंग्लिश से आ रहे थे वो डंडा लेके से रुक गए और नई ड्रैग लगा दे और शरीर फूल जाता, तो ये लोगों ने आपके सिर छोड़ने के लिए डंडे लगाए कि आपकी गति को कंट्रोल करने के लिए डंडे लगाए। किसी ने कहा बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र करना, बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र करना, परिंदे बताते हैं कि आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, बात नहीं आ रही। जैसे यदि बुलंदियों से आप अच्छी जीवन में उन्नति की उड़ान में हो तो थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि व्यक्ति जब अपने उत्साह में और उड़ान में होता है ना तो उसको कोई ध्यान नहीं रहता, किसी भी बीच बीच में रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। आप स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए, अनकंट्रोल रहेंगे तो आगे जाके आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कई बार बड़े गुस्सा आती स्पीड ब्रेकर को देख करके कि हमारे स्पीड को रोक दिया, किंतु मन को ध्यान रखना। ऐसे ही हमारे जीवन में माता पिता वो सब आपको लिखवा लेंगे, पुस्तक के दे देंगे कि बुलंदियों को उड़ाने को थोड़ा सब्र करना, परिंदे बताते हैं कि आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, सब आपको और पता रहेंगे। अरे तो हम गरीब वासुदा रुकेंगे और आपकी वासुदा में तो और कुछ समय ले लेगा, लेकिन अभी आपको जो बात बता रहे हैं कि ये तीनों पाइप जो लगे हैं ये हमारे लिए हमारे विकास में बाधा है कि साधक है। सुनो क्या है बाधा की साधक, लक्ष्य तो बाधक है कि जो वास्तव में बाधक नहीं है, ये हमारे जीवन में संयम की शिक्षा हमें देते। इसी प्रकार माता पिता और गुरु ये तीनों हमारे जिंदगी में होते हैं, ये हमारे लिए हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमेशा साधक होते हैं। माँ ने हमारे पर कितना उपकार किया, आज हम देखते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ के प्रति पिता के लिए रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए, जो सम्मान का भाव होना चाहिए वो नहीं रहता। पहले हम लोग को ध्यान है, जब मम्मी पापा हम लोग को डांटते थे और आग निकाल करके देखते थे, माने अगर आग निकाल के देखने हम लोग घर पर आम जाते थे, लेकिन अब यदि मम्मी और बेटी हमारे सामने बैठी हो और मम्मी की कोई हिम्मत नहीं कि वो बच्चे की शिकायत कर सके, वो शिकायत करने का शुरुआत करेगा तो बेटी आंख निकाल के देखती मम्मी कर। हम आजकल तक नहीं जाते कि जहाँ मम्मी पापा के डर से बच्चे सन्मार्ग में लगते थे, आज मम्मी पापा का डर हमारे मन से निकल गया। सही बताना, कितने लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे अपने मम्मी पापा से डर लगता है। रियलिटी बताना, झूठ बोले तो मछली से करो। कितने ऐसे हाथ नहीं उठाना कि मम्मी पापा को डराते हैं ब्लैकमेल करके। अरे ये पांच पांच छह छह साल के बच्चे मम्मी पापा को ब्लैकमेल करते हैं। कारण ये है कि उन्होंने हमारे पर उपकार किया, अभी हमें उसका कोई बोझ नहीं। जब माँ माँ के गर्भ में थे, जब माँ के पेट में थे, नौ माह तक माँ ने हमें अपने पेट में रखा और कितने पैसों को सहा, घूमना फिरना खाना पीना उठना बैठना आप देखना, उन माताओं को जो की माँ बनने वाली होती है, किस तरह उनका चलना फिरना आदि होता है, खाने में भी उसके अंदर से बता रहे जो स्वास्थ्य वस्तु उसका भी माँ त्याग करती है कि मेरी शोर में पलने वाले बच्चे को कोई कीड़ा न। और गरीब से गरीब माता पिता भी है तो भी वो बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु की संयोजना माँ स्वयं होती रह जाती है, किंतु बच्चों को जरूर खिलाती है। लेकिन उस माँ के प्रति ही आज हमारे मन में सम्मान का भाव नहीं है। बहुत से बच्चे आज के लिए दूर होते चले जाते हैं कि माँ मम्मी को कहते हैं, समझ मम्मी को पास अलग कहती रहती है, उसका काम ही है हमें क्या करना है, चुपचाप कर लो। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने मित्रों से जो सारी बात शेयर करते हैं कि मम्मी पापा से छुपा जाते हैं। पर हमने अपने जीवन का एक गाइड अगर कोई बनाया तो ऐसे मित्रों को हमने बनाया है कि जिस मित्र ने कभी स्वयं अच्छा आचरण नहीं किया तो हमें अच्छे आचरण की प्रेरणा देते थे। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो कि माता पिता की बात मानते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, किंतु आज हमें यही कहना कि माता और पिता समझो, माँ ने आज हमें पाल पोस करके बड़ा किया। नहीं तो आज कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने गर्भ में आने वाली शिशु को गर्भ में ही मार देती है और गर्भपात करा देती है। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी माँ वो माँ थी जिसने सैकड़ों बच्चों को सहन किया और हमें जन्म दिया, उसने हमारा गर्भपात नहीं किया। इसीलिए बच्चों इतना हमारा कहना है, यदि जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि हमारी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। जिस दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ जाएगा, समझ लेना उस दिन हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। चाहे दुर्गा हो चाहे बेटी हो, सभी हमारी बात को ध्यान से सुनना और ये सूत्र लिख करके जाना ले जाना कि गुरु जी ने कहा कि कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ जाए। और जिस दिन तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से आएगा, उसे समझना मेरे दुनिया का जिंदगी का बहुत बड़ा अपराध किया कि मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू। आज बच्चों की वजह से माँ रो रही है, आज माँ को केवल पिता की भी आंखों में अगर आंसू आ गए तो समझ लेना इतने बड़े उपकार का हमने बदला नहीं चुकाया। वो छोटा सा चूहा ने तो खेत का उपकार चुका दिया कि जो हम अपने माँ का उपकार नहीं चुका पा रहे। इसी प्रकार पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिता कितनी मेहनत करते हैं और सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उनका भी उपकार हमारे ऊपर है, इसको ध्यान रखना है। और तीसरा उपकार किसका है, लिखना लिखना। तीसरा वर्ण किसका है? गुरु का। गुरु का अवतार हम कहते महान तो नहीं, छुपाने का महान तो कम होगा अवतार को माने तो कई लोग स्त्री स्त्री में आने को तैयार नहीं है। पता नहीं महाराज के पास गए और क्या कहेंगे महाराज, जी छोड़ो वो छोड़ो और हमारा जीवन दुखी बन गया। अब बताओ गुरु हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए है कि दुखी बनाने के लिए? गुरु की संगति में आपके जीवन सुखी बनेगा कि दुखी बनेगा? अभी मैंने महाराज के नाम सुना रहे हो